एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई के मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। हमारे सभी श्रोताओं का अभिनंदन।
नमस्कार, आज हम जोशुआ फो की एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करेंगे, मूनवॉकिंग विद आइंस्टाइन, द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिमेम्बरिंग एवरीथिंग।
हाँ, जिसका हिंदी में मतलब हुआ आइंस्टाइन के साथ चांद पर चलना, याददाश्त की कला और विज्ञान।
बिल्कुल।
और ये किताब ना एक बड़ा सवाल उठाती है, क्या ये जो कमाल की याददाश्त होती है जो हमें बिल्कुल हैरान कर देती है, वो बस कुछ खास लोगों को ही मिलती है, मतलब जन्म से, या फिर ये कोई ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है, विकसित कर सकता है?
और ये सवाल आज के ज़माने में है ना, शायद पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।
कैसे?
भाई, जब हम सब कुछ अपने फ़ोन पर, कंप्यूटर पर याद रख रहे हैं, तो क्या अपने दिमाग की कसरत करना, अपनी अंदर की याददाश्त को तेज़ करना, क्या ये वाकई मायने रखता है?
और शायद इसी वजह से उनका नज़रिया थोड़ा अलग है ना?
हाँ बिल्कुल, उन्होंने शुरुआत की एक बाहरी आदमी की तरह। मतलब उन्हें एक असाइनमेंट मिला था अमेरिका की मेमोरी चैंपियनशिप कवर करने का।
अच्छा।
तो वो वहाँ गए और उन्हें लगा, भाई ये जो लोग हैं जो पलक झपकते ही सैकड़ों ताश के पत्ते या नंबर याद कर लेते हैं,
हाँ हाँ
ये तो पक्का कोई मतलब पैदाइशी जीनियस होंगे, इनका दिमाग ही अलग बना होगा।
लेकिन फिर क्या हुआ, उनकी सोच बदली?
हाँ बदली, जब वो कुछ मेंटल एथलीट से मिले, खासकर एड कुक नाम के एक मेमोरी ग्रैंड मास्टर से।
एड कुक, हाँ, किताब में जिक्र है।
और मजे की बात, उन्होंने फॉर को चैलेंज कर दिया।
चैलेंज? कैसा चैलेंज?
कि तुम भी सीख सकते हो, और फॉर ने वो चुनौती मान ली। उन्होंने करीब एक साल तक ट्रेनिंग ली।
एक साल?
हाँ, और 2006 में वो खुद यूएस मेमोरी चैंपियन बन गए।
क्या बात है, मतलब एक पत्रकार से चैंपियन, तो वो सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहे, वो खुद उस रास्ते पर चले हैं।
बिल्कुल, इसीलिए ये किताब इतनी खास है। ये सिर्फ मेमोरी ट्रिक्स की कोई लिस्ट नहीं है जैसा लगता है।
तो फिर क्या है?
ये एक तरह का सफर है। फॉर हमें याददाश्त के इतिहास में ले जाते हैं, उसके पीछे का विज्ञान समझाते हैं, और इसे कला की तरह कैसे इस्तेमाल करें ये बताते हैं।
वो ये पता लगाने निकले कि आखिर ये लोग करते कैसे हैं, मतलब मिनटों में इतनी सारी चीजें याद रखना, ये कोई दिमागी सुपर पावर है?
हाँ, या फिर वो पुरानी भूली हुई कला है जिसे शायद यूनानियों और रोमनों ने इस्तेमाल किया था, और जिसे हम आज इस डिजिटल युग में भूल चुके हैं। और किताब का जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत उम्मीद देता है। वो ये कि असाधारण याददाश्त कोई किस्मत की देन नहीं है।
अच्छा।
हाँ, इसे सही तकनीक और जिसे लेखक कहते हैं डेलिबरेट प्रैक्टिस।
डेलिबरेट प्रैक्टिस मतलब?
मतलब सचेत होकर, ध्यान लगाकर अभ्यास करना।
मुश्किल अभ्यास।
उससे हासिल किया जा सकता है। और कमाल ये है कि ये तकनीकें हजारों साल पुरानी हैं।
अरे वाह, तो ये किताब मतलब हर किसी के लिए है जो अपनी मेमोरी सुधारना चाहता है?
हाँ, या फिर बस ये समझने में दिलचस्पी रखता है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, हम सीखते कैसे हैं, याद कैसे रखते हैं।
चलिए, तो फिर जरा अंदर चलते हैं, किताब के कुछ खास हिस्सों और उन तकनीकों पर बात करते हैं जिन्होंने फोर को चैंपियन बना दिया।
जरूर। तो शुरुआत में फोर हमें मेमोरी चैंपियनशिप की उस थोड़ी कह सकते हैं अजीब सी दुनिया में ले जाते हैं।
हाँ, वो बताते हैं ना कि लोग कानों पर हेडफोन लगाए, आंखें बंद किए बैठे हैं।
बिल्कुल, और अविश्वसनीय स्पीड से चीजें याद कर रहे हैं। यही उनकी मुलाकात एड कुक से होती है और उनका ये सफर शुरू होता है।
अच्छा।
फिर वो हमें कुछ बहुत ही अनोखे लोगों से मिलवाते हैं, जैसे एक किरदार है एस सोलोमन शरिशेव्स्की।
हाँ, उनके बारे में पढ़ा था, उनकी याददाश्त तो लगभग परफेक्ट थी, है ना, कुछ भूलते ही नहीं थे।
हाँ, लेकिन ये उनके लिए एक तरह का अभिशाप बन गया था। वो फालतू की डिटेल्स भी नहीं भूल पाते थे। अमूर्त चीजें जैसे मजाक या रूपक उन्हें समझने में दिक्कत होती थी।
ओह, तो इससे क्या पता चलता है?
इससे ये जरूरी बात सामने आती है कि अच्छी मेमोरी का मतलब सिर्फ सब कुछ याद रखना नहीं है, सही समय पर भूलना भी उतना ही जरूरी है,
ताकि दिमाग जरूरी चीजों पर फोकस कर सके।
बिल्कुल, गैर जरूरी शोर को हटाना भी जरूरी है।
यहीं पर शायद वो डॉक्टर के एंडर्स एरिक्सन का काम आता है, डेलिबरेट प्रैक्टिस वाला।
हाँ बिल्कुल सही, एरिक्सन का काम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये सिद्धांत दिया। उनका कहना है कि किसी भी चीज में माहिर होने के लिए सिर्फ घंटों प्रैक्टिस करना काफी नहीं है।
तो फिर
अभ्यास फोकस्ड होना चाहिए, मुश्किल होना चाहिए। आपको लगातार अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये रटने से एकदम अलग है।
हाँ, वो ओके प्लेटो वाली बात भी करते हैं।
सही पकड़ा, ओके प्लेटो मतलब वो स्टेज जब हम किसी काम में बस ठीक ठाक हो जाते हैं और फिर बेहतर होना बंद कर देते हैं, अटक जाते हैं।
और फौरन ने भी अपनी ट्रेनिंग में ये महसूस किया था?
हाँ, उन्होंने बताया है कि कैसे वो एक पॉइंट पर आकर अटक गए थे और फिर उन्हें और मेहनत करनी पड़ी।
और फिर आती है वो सबसे मशहूर तकनीक, मेमोरी पैलेस।
हाँ, स्मृति महल। ये शायद इस किताब की सबसे जानी मानी देन है। हजारों साल पुरानी यूनानी तकनीक है ये।
काम कैसे करती है ये?
तरीका बड़ा दिलचस्प है। आप कोई जानी पहचानी जगह, जैसे अपना घर या रोज का रास्ता, उसकी कल्पना करते हैं।
ठीक है।
फिर जो चीजें आपको याद करनी है, उनकी बहुत ही अजीब, मजेदार, शायद थोड़ी भड़कीली, मतलब यादगार तस्वीरें बनाते हैं और उन तस्वीरों को उस जगह के अलग अलग कोनों में एक क्रम में रखते जाते हैं।
अच्छा, जैसे वो किराने की लिस्ट वाला उदाहरण देते हैं।
बिल्कुल। सोचिए आपको दूध, अंडे और ब्रेड याद रखने हैं, तो आप कल्पना करते हैं कि आपके घर के दरवाजे पर दूध का झरना बह रहा है।
हाँ हाँ।
आपके सोफे पर हजारों अंडे फूटकर चिपचिपा रहे हैं और बाथरूम के टब में ब्रेड के बड़े बड़े टुकड़े तैर रहे हैं।
सुनने में तो बहुत ही अजीब है।
अजीब है, इसीलिए तो याद रहता है। हमारा दिमाग साधारण चीजों को भूल जाता है, पर ऐसी अनोखी, भावनात्मक, थोड़ी फनी या घिनौनी तस्वीरों को फौरन पकड़ लेता है। ये रटने से ज्यादा क्रिएटिव काम है।
ये तो वाकई दिलचस्प है। फोन ने खुद ऐसे महल बनाए थे?
हाँ, उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने ताश के पत्ते याद करने के लिए, नंबर याद करने के लिए ऐसे कई मेमोरी पैलेस बनाए।
किताब में इस बात पर भी चर्चा है ना, ने कैसे लिखने, फिर प्रिंटिंग और अब इंटरनेट ने हमारी मेमोरी को बदला है।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पहले जब लिखना आम नहीं था, तब याददाश्त ही ज्ञान को सहेजने का जरिया थी। बड़े बड़े महाकाव्य, कहानियां, इतिहास, सब लोगों को जुबानी याद रहते थे।
सही बात है।
फिर लिखने और छपाई ने ये बोझ कम किया और अब तो इंटरनेट है। हम अपनी यादें, जानकारी, सब कुछ बाहरी डिवाइस में स्टोर कर रहे हैं, जिसे एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं।
तो फोक का सवाल क्या है? क्या ये बुरा है?
वो सवाल उठाते हैं कि क्या इस बाहरी निर्भरता की वजह से हमारी अपनी दिमागी क्षमता, हमारी अंदरूनी मेमोरी कमजोर हो रही है? क्या हम गहराई से सोचने की आदत खो रहे हैं, क्योंकि जानकारी इतनी आसानी से मिल जाती है?
सोचने वाली बात है। फोर्न ने अपनी ट्रेनिंग में और क्या क्या सीखा? वो ओके प्लेटो को कैसे तोड़ा उन्होंने?
हाँ, उसके लिए उन्हें और एडवांस तकनीकें सीखनी पड़ी, जैसे PAO सिस्टम।
PAO? वो क्या है?
पर्सन एक्शन ऑब्जेक्ट, यानी व्यक्ति क्रिया वस्तु। इसमें आप हर नंबर या ताश के पत्ते के लिए एक व्यक्ति, एक काम और एक चीज तय कर लेते हैं।
अच्छा,
कैसे?
जैसे मान लीजिए नंबर 17 के लिए आपका व्यक्ति है आइंस्टीन, क्रिया है साइकिल चलाना और वस्तु है चांद।
ठीक है।
तो जब आपको 171717 जैसा नंबर याद करना हो, तो आप एक ही तस्वीर बनाते हैं। आइंस्टीन 17 का व्यक्ति, साइकिल चला रहे हैं 17 की क्रिया, चांद पर 17 की वस्तु।
अरे वाह, मतलब एक ही इमेज में तीन नंबर आ गए।
बिल्कुल, इससे जानकारी बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती है और आप तेजी से याद कर पाते हैं।
ये तो काफी जटिल लगता है।
है, लेकिन इसी से वो ओके प्लेटो तोड़ पाए और चैंपियनशिप के लिए तैयार हुए।
और फिर किताब का क्लाइमैक्स आता है, वो चैंपियनशिप जीत जाते हैं।
हाँ, जो इस बात का सबूत है कि ये तकनीकें काम करती हैं। एक आम इंसान सही ट्रेनिंग और उस डेलिबरेट प्रैक्टिस से अपनी मेमोरी को असाधारण बना सकता है।
लेकिन किताब के आखिर में वो एक मजेदार बात बताते हैं ना।
हाँ।
वो कहते हैं कि चैंपियन बनने के बाद भी वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि उन्होंने अपनी कार की चाबियां कहाँ रखी।
हाँ हाँ, तो फिर फायदा क्या हुआ?
यही कि ये सीखी हुई मेमोरी एक टूल की तरह है, इसे जानबूझकर इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आपकी रोजमर्रा की ऑटोमेटिक मेमोरी को अपने आप ही सुधार देती है।
तो फिर असली फायदा क्या है इन तकनीकों का?
शायद कुछ और गहरा। चलिए उन बड़े सबक पर बात करते हैं जो इस किताब से मिलते हैं।
हाँ, जरूर।
तो पहला और शायद सबसे जरूरी सबक, हमारी याददाश्त पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, ये एक मांसपेशी की तरह है
जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है।
बिल्कुल। हमारी जो सीमाएं हमें लगती हैं, वो अक्सर हमारी कोशिश या सही तकनीक की कमी होती है, न कि हमारी पैदाइशी काबिलियत की। ये बहुत उम्मीद देने वाली बात है।
सही कहा। और दूसरा सबक ये कि याद रखने का असली राज रटना नहीं है।
हाँ, बल्कि जानकारी को दिलचस्प बनाना है, उसे भावनात्मक बनाना है, उसे विजुअलाइज करना है,
जैसे मेमोरी पैलेस करता है, तथ्यों को कहानियों और अजीब तस्वीरों में बदल देता है।
एग्जैक्टली। रट्टा मारना बोरिंग है, कहानी बनाना मजेदार। दिमाग मजेदार चीजें बेहतर याद रखता है।
तीसरा सबक वो डेलिबरेट प्रैक्टिस वाला।
हाँ, ये सिर्फ मेमोरी के लिए नहीं, किसी भी स्किल के लिए सच है, चाहे आप गिटार सीख रहे हों, कोई नई भाषा या खेल। सिर्फ घंटों लगाना काफी नहीं।
फोकस के साथ अपनी कमियों पर काम करते हुए और खुद को लगातार चुनौती देते हुए अभ्यास करना।
बिल्कुल, तभी आप उस ओके प्लेटो से आगे बढ़ पाते हैं।
चौथा पॉइंट मुझे बहुत गहरा लगा कि हमारी यादें ही हमें इंसान बनाती हैं, हमारी पहचान।
हाँ, किताब में कुछ केस स्टडीज हैं, जैसे HM और EP, जो नई यादें बनाई नहीं सकते थे।
तो उनका कोई अतीत नहीं था
और इसलिए कोई भविष्य भी नहीं। वो हमेशा वर्तमान के एक पल में अटके रहते थे। तो हाँ, हमारी यादें ही हमारे जीवन को एक कहानी बनाती हैं, एक पहचान देती हैं।
बात तो है। और पांचवा सबक टेक्नोलॉजी वाला।
हाँ, कि बाहरी मेमोरी ठीक है, सुविधाजनक है, पर हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अपने सोचने की क्षमता को सिर्फ गूगल सर्च करने की आसानी से बदल रहे हैं।
क्या अपनी अंदरूनी मेमोरी को बेहतर बनाने का कोई और भी फायदा है सिर्फ चीजें याद रखने के अलावा?
शायद हाँ, हो सकता है ये हमारी क्रिएटिविटी से, गहराई से सोचने की क्षमता से जुड़ा हो।
और एक चीज जो मुझे भी लगी कि ये मेमोरी ट्रेनिंग असल में ध्यान देने की ट्रेनिंग है।
बिल्कुल, उन तकनीकों को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने आसपास की दुनिया पर ज्यादा गौर करना पड़ता है, चीजों को नोटिस करना पड़ता है, बारीकियों पर ध्यान देना पड़ता है।
तो शायद याददाश्त सुधारने का एक साइड इफेक्ट ये है कि हम ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, ज्यादा ध्यान से जीने लगते हैं।
हाँ, ये मुमकिन है।
किताब में कुछ कोट्स भी हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं।
हाँ, कई हैं, जैसे फॉर पूछते हैं, हमारा जीवन हमारी यादों का योग है। हम अपने फोन में खोकर, ध्यान ना देकर अपने पहले से ही छोटे जीवन से कितना कुछ खोने को तैयार हैं।
ओह, ये तो सीधा आज की हमारी डिजिटल आदतों पर सवाल है। कितना समय हम स्क्रीन पर बिताते हैं बिना कुछ याद रखे।
बिल्कुल, एक और अच्छी बात है, एक रास्ता समय को समेट देती है, नवीनता उसे खोल देती है।
इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब जब जिंदगी रोज एक जैसी चलती है रूटीन में, तो हफ्ते महीने कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, यादें भी धुंधली हो जाती हैं।
हाँ, ये तो होता है।
लेकिन जब कुछ नया होता है, कोई यादगार घटना, कोई यात्रा, तो वो समय हमें ज्यादा लंबा और भरा हुआ लगता है, उसकी यादें भी साफ रहती हैं।
सही बात है, छुट्टियों का एक हफ्ता कई बार ऑफिस के एक महीने से ज्यादा यादगार और लंबा लगता है।
बिल्कुल, और एक और रूपक है, स्मृति एक मकड़ी के जाले की तरह है, जितनी अधिक ये पकड़ती है उतनी ही बड़ी होती जाती है।
अच्छा,
और जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ही ज्यादा पकड़ सकती है।
मतलब जितना पहले से जानते हैं उतना ही नया सीखना आसान हो जाता है।
हाँ, क्योंकि नई जानकारी को जोड़ने के लिए आपके दिमाग में पहले से ज्यादा हुक्स, ज्यादा संदर्भ मौजूद होते हैं। ज्ञान नए ज्ञान को आकर्षित करता है।
ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये मेमोरी पैलेस, PAO वगैरह सिर्फ मेमोरी कॉम्पिटिशन्स के लिए है, या हम जैसे आम लोग भी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो किताब का मकसद है।
कैसे, कुछ उदाहरण देंगे?
जरूर, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मुश्किल फॉर्मूले, इतिहास की तारीख हैं, परिभाषाएं याद करनी होती हैं, वो इनके लिए मेमोरी पैलेस बना सकते हैं।
अच्छा, रटने की बजाय विजुअलाइज करके।
हाँ, इसी तरह जो लोग काम करते हैं वो प्रेजेंटेशन के मुख्य बिंदु याद रख सकते हैं, क्लाइंट्स के नाम और चेहरे याद रख सकते हैं, मीटिंग की जरूरी बातें।
हाँ, लोगों के नाम भूल जाना तो बहुत आम समस्या है, उसके लिए भी कोई ट्रिक है?
बिल्कुल है, जैसे किसी से मिलें तो उनके नाम को उनके चेहरे के किसी खास फीचर से अजीब तरह से जोड़ दें। मान लीजिए किसी का नाम कमल है और उनकी नाक थोड़ी बड़ी है, तो कल्पना करें कि उनकी नाक पर एक बड़ा सा कमल का फूल खिला हुआ है।
ये तो मजेदार है, अजीब है पर शायद याद रह जाए।
अजीब है इसीलिए याद रहेगा।
और शॉपिंग लिस्ट या रोज के काम, उसके लिए भी फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी?
कोशिश कर सकते हैं, दिमाग में ये छोटा सा फनी सा मेमोरी पैलेस बना लें, दरवाजे पर दूध, खिड़की पर ब्रेड, सोफे पर अंडे, ये एक तरह की दिमागी कसरत भी है, दिमाग तेज रहता है।
और वो डेलिबरेट प्रैक्टिस वाला सिद्धांत,
वो तो हर जगह काम आता है, कोई नई भाषा सीखनी हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना हो, या कोई खेल, हर जगह।
लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फायदा शायद वही है जो आपने कहा, ये तकनीकें हमें अपने आसपास की दुनिया पर ज्यादा ध्यान देना सिखाती हैं।
बिल्कुल, ताकि हमारा जीवन सच में यादगार बन सके, सिर्फ गुजर ना जाए।
तो अंत में इस किताब से आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि हम अपनी दिमागी क्षमता को बहुत कम आंकते हैं, जिसे हम गॉड गिफ्ट या जीनियस मान लेते हैं, वो कई बार सिर्फ सही तकनीक और बहुत सारी सचेत मेहनत का नतीजा होता है। ये किताब उस असाधारण क्षमता के दरवाजे हम सबके लिए खोलती है।
और मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि याददाश्त सुधारना सिर्फ जानकारी का ढेर लगाना नहीं है, ये असल में अपने अनुभवों को ज्यादा गहराई से महसूस करना है, दुनिया को ज्यादा ध्यान से देखना है, और शायद ज्यादा क्रिएटिव बनना है।
सही कहा।
असली इनाम वो मेमोरी चैंपियनशिप की ट्रॉफी नहीं है, बल्कि वो पूरी प्रक्रिया है जो आपके जीने के तरीके को बदल सकती है। एक ज्यादा जागरूक, ज्यादा भरा पूरा जीवन ही असली जीत है।
बिल्कुल, और ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी हजारों साल पुरानी तकनीकें और बुद्धिमत्ता आज भी कितनी काम की हैं।
शायद इस एआई और बाहरी मेमोरी के दौर में अपनी अंदरूनी मेमोरी को जगाना और उसे बेहतर बनाना, ये सिर्फ चीज़ें याद रखने के लिए नहीं, बल्कि हमारी इंसानियत, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी गहराई को बचाने के लिए ज़रूरी है।
सोचने वाली बात है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज़, अपने दिमाग का कितना कम इस्तेमाल करते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।